मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
ओम शांति। हम सभी अपने आदरणीय उषा दीदी का दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की नुमा शाम में हम सभी अपने आदरणीय उषा दीदी से कैसे हमारा चेहरा और चलन सेवा करे, क्योंकि बाबा ने हम सभी को ये विशेष सेवा के लिए एक चेहरा साधन दिया है। बाबा कहते कि बच्चे आप मेरे बच्चे चलते फिरते म्यूजियम हैं। तो म्यूजियम का मतलब क्या है? हमारा चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करे, हमारी चलन इतनी दिव्य और अलौकिक हो जो बाबा का नाम शो करे। तो आज की नुमा शाम में हम सभी विशेष इस विषय पर सुनेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। आदरणीय उषा दीदी का विशेष यही एक लक्ष्य रहता है कि किसी तरह भी, जैसे कि बाबा ने होमवर्क दिया है कि बाप को प्रत्यक्ष करें, और उसमें भी मुख्य रूप से गीता का भगवान आप सब सुनते रहते हैं, चाहे पीस ऑफ माइंड के रूप से, चाहे आप मधुबन में भी, चाहे आप मीडिया जो न्यूज़पेपर निकलता उसके द्वारा सुनते और पढ़ते हैं कि कैसे आपका मंथन चलता है कि बाबा को किस प्रकार से, क्योंकि सत्य बाप है और वो हमको किस प्रकार से गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और कैसे गीता से सदगति होती है, वो हमको राह दिखा रहे हैं। ना केवल राह दिखा रहे हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचाने का बाबा ने जिम्मेवारी ली है कि मैं तुम बच्चों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन आज का मनुष्य अंधकार में पड़ा है, झूठी दुनिया में पड़ा है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अपने आदरणीय दीदी का विशेष यही लक्ष्य रहता है कि सभी को एक बार ये बात स्पष्ट हो जाए कि सचमुच परमपिता परमात्मा आकर के कैसे हम सबको गीता का ज्ञान दे रहे हैं और किस प्रकार से सदगति की राह पर ले जा रहे हैं। तो आपका विशेष ये पुरुषार्थ रहता है। ना केवल यही बात, लेकिन आप खुद भी सभी देखते हैं मधुबन की धरनी पर कितने अनेक आत्माएं आती हैं, चाहे नीचे योग शिविर का चलता है, चाहे कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, चाहे ऊपर ज्ञान सरोवर में, लेकिन आपका सभी उसमें विशेष रोल रहता है। हमने कभी आपको देखा नहीं कि आपने कभी किसी बात पर ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ। जैसे भी करके अपना टाइम एडजस्ट करके भी आप अपनी सेवाओं के लिए समय निकालते हैं। इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि इतना आप अपने आप को बिजी रखते हैं, आपके पास तो व्यर्थ आने का तो मतलब ही नहीं है। तो आप अपने अनुभव से हम सबको बताएंगे कि कैसे हम चेहरे और चलन से सेवा करें और व्यर्थ से मुक्त रहें, वो अभी हम सुनेंगे आदरणीय उषा दीदी से।
ओम शांति। बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को कई बार अव्यक्त मुरलियों द्वारा या संदेश पुत्रियों के संदेशों द्वारा। ये बात बहुत सुंदर और स्पष्ट की है कि बच्चे अब आगे जो समय आने वाला है उस समय आपका चेहरा और चलन बाप को प्रत्यक्ष करे। तो चेहरा और चलन बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेगा? जब उस बात के ऊपर मैं सोच रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि सचमुच बाबा को इस दुनिया का भी कितना नॉलेज है कि वर्तमान समय दुनिया में भी जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसमें विशेष अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो उनका फोकस भी चेहरा और चलन ही होता है। चेहरे के ऊपर कितना लिपा पोती करते रहेंगे, मेकअप से उसको कितना अट्रैक्टिव बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, कितना खर्चा टाइम मनी खर्च करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और चेहरे को कैसा भाई स्मार्ट दिखे, इस दुनिया के हिसाब से स्मार्ट बन करके चलना है, नहीं तो लोग कोई पूछेंगे नहीं, ये ख्याल से कितना चेहरे को बनाने का प्रयत्न करते हैं, अपने दुख दर्द गम टेंशन को छिपाने के लिए वो सारी लिपा पोती करते हैं कि उस मेकअप के पीछे भी उनका वो चेहरा छिप जाए, और दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि नहीं हम बहुत स्मार्ट है ना। दूसरा चलन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दूसरा फोकस उनका चलन पर होता है कि चलन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चलन में एकदम निर्भयता होनी चाहिए, और उस निर्भयता के साथ जब वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो सोचते हैं कि भाई लोग हमसे डरे, लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़े, उसकी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। तो दुनिया में भी आज मनुष्य स्मार्ट दिखने के लिए चेहरा और चलन ये दो पर ही विशेष फोकस करते हैं। तो मैं सोचने लगी कि बाबा को ये दुनिया का कितना ज्ञान है ना। भले बाबा ने कभी अनुभव नहीं किया होगा कि भाई ये दुनिया, लेकिन ऊपर से बाबा कहते मैं जब नीचे देखता हूं और जब लोगों की ये नकली चेहरे और चलन को देखते हैं, अंदर में खोखलापन को देखता है, तो बाबा को भी कितना रहम आता होगा। और इसीलिए शायद बाबा ने हम बच्चों को ये इशारा दिया कि बच्चे अब तुम उनके सामने इस रूप में प्रत्यक्ष हो कि चेहरा और चलन वास्तविकता में कैसा होना चाहिए, जो अंदर से खोखलापन नहीं, कोई बाह्य दिखावटी या बनावटी चीजों को लगाने से वो चेहरा और चलन नहीं, लेकिन भीतर से वो चेहरा और चलन और वो किस तरह से चेहरे के ऊपर प्रत्यक्ष हो जाए। तो चेहरा माना क्या? अगर यही
हम सभी और आप सभी पद्मा पद्म भागशाली हैं कि ऐसी धरणी पर पधारे हैं जहां पर स्वयं सुप्रीम फादर हमारे परम पिता परमात्मा परम प्रिय श्री बाबा ने ब्रह्मातल में प्रवेश करके जो है ग्रेट 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 ग्रैंड फादर उनके द्वारा ज्ञान दिया, ज्ञान रत्नों से सजाया और पालना की बच्चों की, साथ ही ये कहे हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, किसको कहेंगे? मम्मा को कह सकते हैं ना। भले बाबा कहता है मम्मा तो कहती थी मेरी माँ भी ब्रह्मा है, बाबा मम्मा कहती थी मेरी चमकीली माँ को मत भूलना, मम्मा ये कहती थी, फिर भी जगदम्बा सरस्वती सारी वर्ल्ड उनको मानती है, सारी भारत तो उसको मानता ही है।
कर सकते हैं है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो न हो, योग्यता हो न हो, लेकिन ये सेवा कोई भी कर सकते हैं, कहां भी बैठे हुए कर सकते हैं है ना। तो चेहरे में क्या होना चाहिए? चेहरे को दुनिया में भी कहा गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मनस्थिति हमारी कैसी है वो चेहरे से प्रत्यक्ष होती है। तो चेहरा माना मनस्थिति और चलन माना चरित्र। किसी के चरित्र के विषय में अगर बातचीत होती है तो यही कहते इसकी चलन ठीक नहीं है या इसकी चलन बहुत अच्छी है, रॉयल है। तो चलन चरित्र का प्रतीक है और चेहरा मनस्थिति का प्रतीक है। दुनिया में मनुष्य के चेहरे में क्या दिखाई देता है? आजकल भले कितना भी वो आर्टिफिशियल कर ले, अपने चेहरे को बनाने का प्रयत्न कर दे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में क्या स्पष्ट झलकता है? पहली बात झलकती है अहंकार। उनको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन चेहरे से वो अहंकार के भाव स्पष्ट झलकता है। चलन में भी वो अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है ना? तो उनके चेहरे और चलन में कितना भी कर ले वो, लेकिन जो मनस्थिति है और जो चरित्र है उनका, वो अहंकार से भरा हुआ है, इसलिए वही झलकता है।
यही लक्ष्य है ना हमारे संगम युग का, लक्ष्य तो यही है। और फ्यूचर का लक्ष्य क्या है, क्या बनना है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, कमाल है, वर्ल्ड एम्परर एंड वर्ल्ड एम्प्रेस, यानी गोल्डन एज के प्रथम महाराजा और महारानी हमारा लक्ष्य बनना। कितना बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। तो बनना है तो क्या कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन और तीव्र पुरुषार्थ करें। पहले यहां बाबा मम्मा समान बनेंगे तो फिर कन्वर्ट होके जाके बनेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बनेंगे। अगर यहां कुछ कमी रहेगी तो वहां भी कुछ कमी रह जाएगी। तो पहले मैं थोड़ा सुनाता हूं हम कैसे बाबा मम्मा से मिलना हमारा हुआ और कैसे ज्ञान में आना हुआ। हमने बचपन में बहुत भक्ति की थी, बहुत। हमें मिर्जा 10 साल की एज में सारे ये भागवत रामायण महाभारत जो हमारे हिंदुओं के सिंपल सिंपल शास्त्र हैं, आसान
लाखों को
वेद शास्त्र नहीं, सब सुन लिए थे हमने अपने लौकिक फादर से। वो भगत थे और वो हर रोज रात्रि को जाकर के महलों में जाके सुनाते थे, तो हम भी साथ साथ जाते थे सुनते थे। बड़ा इंटरेस्ट था, मैं ध्रुव भगत प्रहलाद कितने भक्तों की बातें सुनी थी। तो मुझे याद है हम 6 साल की आयु में एक टांग पर खड़े होके राम राम जपते थे, कुछ जपते थे कि हमें ध्रुव की तरह हमें भी साक्षात्कार हो जाए। ऐसे बचपन की बात ही थी, बड़ा भक्ति पूरी होगी थी। तो चलते चलते आगे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पढ़ते हुए धीरे धीरे इससे किनारा होता गया, यही कहा भी कर्म अच्छे करने चाहिए, जैसे नेहरू कहता है भाई कर्म योगी बनो, उसने भी कहा कर्म करना ही योग है, हमने ये सोचा। लेकिन ऐसे करते करते जो हमको भक्ति से भी जो विमुख किया, तो जो आजकल के धर्म के ठेकेदार उनसे ही विमुख हुए। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, हम बताएं आपको आज से 58 वर्ष पहले 1957 में, तब हमें ये ज्ञान मिला। इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, एक भाई था ओम प्रकाश भाई, वो ज्ञान
लौकिकता से परे अलौकिकता, तब दिव्यता और रूहानियत से स्पष्ट हो जाएंगे। अलौकिकता के लिए जितनी आत्मअभिमानी स्थिति हमारी बनेगी उतनी अलौकिकता को सहज ला सकेंगे। दिव्यता को लाने के लिए जितना फरिश्ता स्थिति का अभ्यास होगा उतनी दिव्यता आएगी, और रूहानियत लाने के लिए जितनी निराकारी स्थिति होगी हमारी उतनी रूहानियत हमारे अंदर सहज स्वतः आ जाएगी। तो ये तीन चीजों को भरना है अपने चेहरे में, और चलन में क्या भरना है, चलन में क्या भरेंगे, चलन के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि वो चलन में आती है। निश्चय की चाल हो, निश्चय और नशा, बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय और नशा ये चलन में होनी चाहिए। जब ये चलन में आती है निश्चय और नशे वाली चाल, वो दूसरों को वो कॉन्फिडेंस लेवल से भी कई गुना अधिक आत्मविश्वास हमारा देखते हुए दूसरे भी आश्चर्य खाते हैं कि इतना आत्मविश्वास कहां से आया आपके अंदर, क्योंकि उनके अंदर तो एक दिखावटी है, तो खोखलापन है, लेकिन हमारे अंदर खोखलापन नहीं है। निश्चय वाली चाल कैसी होंगी, निश्चिंत भयभीत नहीं होंगी, निश्चित भावी को समझते हुए कोई चीज हमें डराने वाली नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो निश्चिंत है अंदर से, और नशा है तो वो नशे वाली चाल आत्मविश्वास से भी कई गुना अधिक। क्यों, कौन सा नशा है हमें और कौन सा निश्चय है, कि बाप हमारा साथी है, परमात्मा हमारा साथी है। इसीलिए चलन में कहीं पर भी भय नहीं है, बाप दादा को साथ लेकर के जब चलते हैं तो कहीं कोई चीज हमें विचलित नहीं कर सकती है, भयभीत नहीं कर सकती है। ऐसी हमारी चलन आत्मविश्वास से परिपूर्ण है ना, प्राप्तियों वाली चलन। तो ये चेहरा और चल, उसके लिए जितना हमारा चरित्र श्रेष्ठ है ना, हर लेवल की चरित्र की श्रेष्ठता हमारे अंदर है, इतना ऊंचा चरित्र है, तो वो निश्चय और नशा स्वतः बिल्डअप करेगा हमारा अंदर से। इसीलिए जब दूसरे भी हम लोगों को देखते हैं तो क्या कहते, तुम सब बीके का चेहरा, अलग ही चमक है तुम लोगों के ऊपर, है ना। वो भी मेकआउट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी ये चमक है, लेकिन इतना जरूर उनको महसूस होता है कि तुम सब एक जैसे लगते हो, एक जैसे लगते हैं, है ना। क्योंकि डरने वाली बात नहीं होती हम लोगों के अंदर, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। इतना बड़ा परिवार है और परिवार का निश्चय, तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, दुनिया के लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता क्योंकि उनका परिवार इतना छोटा है, तो उनको हर घड़ी भय लगता रहता है। लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा, कभी भी ताली बजाए तो सारा परिवार खड़ा हो जाता है, तो नशा तो होगा कि नहीं? वो निश्चय ही नशा को ले आता है हमारी चलन के अंदर, ये चलन है। अब ये चेहरे को अगर रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता से सजाना है तो कौन सा मेकअप लगाना होगा हमें, कैसे सजाएंगे? तो चेहरे पर अगर देखा जाए, हमारा तो अलौकिक श्रृंगार है ना? तो चेहरे को सजाने के लिए, अभी सजाना किससे है हमें? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, भाई गुणों से सजाना, ये तो ब्रॉड सेंस में हो गया ना, बहुत ब्रॉड हो गया। लेकिन उसकी विधि क्या है? मेकअप लगाने वाले जो होते हैं ना, उसकी भी एक विधि होती है, पहले ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, है ना? तो हमें भी अपने चेहरे पर सबसे पहले क्या लगाना है? मुस्कुराना तो लास्ट में होगा, जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा तब तो मुस्कुराहट आएगी, अधूरे में थोड़ी मुस्कुराहट आएगी। तो चेहरे के ऊपर मुख्य इंद्रियां होती है, आंख, मुख, कान, सोचना, मन, नाक, सारी इंद्रियां मुख पर है अधिकतर। तो सारी इंद्रियां जब मुख पर है तो उसको सजाने के लिए सबसे पहले अंतर्मुखी बनना जरूरी है। अंतर्मुखता यानी भीतर, ये इंद्रियों को भी भीतर ले जाना। जो आज मनुष्य की इंद्रियां बाह्यता में है, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। कुछ ना कुछ ऐसे वचन निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ बात निकल जाती है, फिर अफसोस करते रहते हैं, व्यर्थ चलाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, है ना? तो जब हमारी इंद्रियां बाह्य मुखता में है तो हम अपने आप को सजा नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने आप को सजाने के लिए अंदर जाओ। लोग भी मेकअप बाहर थोड़ी करते हैं, पब्लिक के सामने थोड़ी, अंदर जाते हैं ना, उनका रूम होता है। तो हमें भी भीतर जाना है, अंतर्मुखी बनना है। और अंतर्मुखता जब आ जाती है तो धीरे धीरे हमारा सजावट शुरू होता है। अंतर्मुखता माना साइलेंस, साइलेंस की शक्ति से अपने आप को भरना है सबसे पहले, है ना? साइलेंस की शक्ति को भरना है अपने अंदर, वही रूहानियत को डेवलप करने में मदद करे। वही अलौकिकता, लौकिकता माना बाह्यता, अलौकिकता माना अंतर्मुखता से ही अलौकिकता आएगी। और जितना हम भीतर ले जाएंगे, अपने आप को भीतर ले जाएंगे, तो उसी का प्रभाव हमारी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति पर पड़ता है। इसीलिए स्मृति, दृष्टि, वृत्ति के अंदर दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत, वो चेहरे पर प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे भीतर जाना होगा। अंदर चले जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ, साइलेंस की शक्ति से अपने आप को भर लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कौन सा मेकअप लगाना है? अंतर्मुखी हो गए, साइलेंस हो गए, फिर बाबा की सकाश से, पवित्रता की शक्ति से निखारना है उसको। तो पवित्रता की शक्ति को उसे निखारो, उससे हमारे मन और बुद्धि को स्वच्छ करना है। जितना अंदर की स्वच्छता होगी तो मन निर्मल होने लगेगा, वो चेहरा निर्मल होने लगेगा, प्योर। जितना वो चेहरा निर्मल है उतना ही तो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, विकृतियां समाप्त हो जाती है। तो अंतर्मुखी बनते हुए साइलेंस की शक्ति को अंदर भरना है, फिर पवित्रता की शक्ति से उसको निखारना है, मन बुद्धि को स्वच्छ करते हुए। व्यर्थ से अपने आप को जब मुक्त कर देते हैं, बाबा की एक मुरली याद आती है कि बाबा ने कहा था, बच्चे व्यर्थ भी एक प्रकार की अपवित्रता है, इम्प्यूरिटी है। तो इसीलिए पवित्र मना पवित्रता से जब हम अपने आप को भरते हैं, उस शक्ति से भरते हैं, तब हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होने लगती है और इतना निर्मल मन हो जाता है कि अंदर बाहर एक हो जाते हैं, डुप्लीकेसी नेचर के अंदर नहीं रहती है, इतना क्लीन निर्मल मन हो गया। उसके बाद क्या डालेंगे, कैसे सजाएंगे? तीसरा कदम है फिर ज्ञान की शक्ति से उसको संवारना है। बाबा ने इतने ज्ञान रत्न हमें दिए हैं, उन ज्ञान रत्नों का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभवी बनते जाना है। कौन से समय पर, स्थान पर, कौन सी ज्ञान की बात को अप्लाई करना है, कहां कर्म फिलॉसफी की बात को अप्लाई करना है, कहां पुरुषार्थ की बात को अप्लाई करना है, तो कहां ड्रामा की बिंदी लगा के फुल स्टॉप लगाना है। तो सही समय पर, सही स्थान पर, सही ज्ञान की पॉइंट का एप्लीकेशन, क्योंकि ज्ञान सारा मिल गया है हम सब बच्चों को, लेकिन कभी कभी वही ज्ञान में चलने वाले अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहते हैं। क्यों? जहां रॉन्ग एप्लीकेशन हुआ समस्या आई, परिस्थिति क्रिएट हुई। इसीलिए परिस्थिति समस्या के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। हमारी लाइफ में जो परिस्थिति आती है, जो बातें आती है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं। शायद गलत स्थान पर, गलत व्यक्ति के सामने मैंने गलत बात कह दी, रॉन्ग एप्लीकेशन हो गया। जहां रॉन्ग एप्लीकेशन हुआ तो समस्या तो खड़ी होगी, ये तो होगा नहीं कि नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करना आ जाए तो जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कई बार हमें शक्तियों का मिसाल देते हैं कि बच्चे जहां सहन करना है वहां सामना नहीं करो, जहां निर्णय लेना है वहां सहन करके बैठ नहीं जाओ, टेक डिसीजंस। आपको डिसीजन लेना है, सहन करके बैठ गए डिसीजन ही नहीं ले रहे, तो परिस्थिति तो खड़ी होगी कि नहीं होगी, है ना? समस्या तो खड़ी होगी कि नहीं होगी। तो सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट को सही तरीके से अप्लाई करना, ये परिस्थिति और समस्याओं को सुलझाएगा, नहीं तो बढ़ाएगा। तो हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है, परिस्थितियां है, सर्कमस्टेंसेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसका मतलब कोई ना कोई ज्ञान की एप्लीकेशन रॉन्ग हो रही है ना। आजकल दुनिया के अंदर मोबाइल में भी एप्लीकेशंस आते हैं ना? लोग स्मार्टफोन रखना चाहते हैं अपने पास में, बढ़िया वाला है ना, बड़ा, जिसमें सारे एप्लीकेशंस हो। लेकिन कई बार कई माताएं होती है ना, उनको अप्लाई करना तो आता नहीं है, स्मार्टफोन लेकर के चल रहे हैं, और कोई अगर कह दे भाई, तो कहते देख मेरे को दो बटन दबाना आता है इसमें, बाकी और कुछ मेरे को नहीं आता है, ऐसे कह देंगे। लेकिन कई माताएं ऐसी स्मार्ट बन गई है फोन के साथ साथ, जो उनको सब कुछ अप्लाई करना आ जाता है और सही एप्लीकेशन चलाती है। और जब सही एप्लीकेशन आए तो क्या होता है, उसका सुख मिलता है। राइट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, राइट एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, तो बाबा के गीत भी सुनने मिलेंगे, बाबा की मुरली भी मिलेगी, हाँ, मनन चिंतन की बातें भी मिलेगी, स्लोगन भी मिलेगा, सब मिलेगा, और खुशी बढ़ेगी। हाँ, नोट भी कर लेंगे, है ना, सब कुछ होगा। लेकिन अगर एप्लीकेशंस आया ही नहीं, तो इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने भी हमें इतने एप्लीकेशंस दे दिए हैं, ड्रामा का एप्लीकेशन वंडरफुल है ना, कि व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने वाली इतनी पावरफुल एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी हमें यूज करना नहीं आ रहा है, इसलिए व्यर्थ बहुत चल रहा है, अंदर भाग रहा है मन, है ना। पुरुषार्थ की इतनी एप्लीकेशंस बाबा ने दी है, श्रेष्ठ कर्म की कितनी एप्लीकेशंस बाबा ने दी है, आत्मस्थिति कब बन जाना है कितनी एप्लीकेशन है, कि आत्म अभिमानी बनो, हाँ, निराकारी स्टेज में स्टेबिलाईज कर लो अपने मन को, कितनी एप्लीकेशन, एक आत्मा का ही एप्लीकेशन कितनी जगह होता है। कभी कभी इसके ऊपर अगर विचार सागर मंथन करो आप, कि खाली एक आत्मा का ज्ञान कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आत्मा का ज्ञान, आत्मस्थिति में स्थित होकर कर्म करो, तो कर्म में त्रुटि नहीं रहेगी, यथार्थ रूप में आप कर्म योगी बनेंगे। आत्मा के ज्ञान का एप्लीकेशन संबंधों में क्या इफेक्ट लाता है, कि संबंधों में कभी हमारे संस्कार टकराव नहीं होंगे। आत्मा के ज्ञान का एप्लीकेशन और कहां कहां होगा, मनसा सेवा करने में। आत्मा के ज्ञान का एप्लीकेशन दूर भी किसी को बैठ करके टेलीपैथिक कनेक्शन करके उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हम दे सकते हैं, कोई बीमार है तो उसको शफा दे सकते, एक आत्मा के स्थिति में स्थित होने से कितने एप्लीकेशन है। ऐसे एक एक चीज का निकालो, कि ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने वंडरफुल हमें दिया, उसका एप्लीकेशन कहां कहां हो सकता है। तो आप सचमुच अपने मन के अंदर इतनी खुशी का अनुभव करेंगे कि अरे इतना खजाना है मेरे पास में, और मुझे पता ही नहीं है इतने एप्लीकेशंस है, कितना सुख प्राप्त कर पाएंगे। एक फोन के एप्लीकेशन आने से आपको सुख मिल जाता है ना। तो ज्ञान की हर एक बात को यथार्थ रीति अप्लाई करने में कितना स्थिति जो है हमारी, जैसे एलिवेट लिफ्ट में ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा महसूस करेंगे, सारा दिन एकदम हल्कापन महसूस करेंगे, और इतने बिजी रहेंगे आप उसी के अलग अलग एप्लीकेशनों में, उसका सुख लेने में, आपके पास व्यर्थ के लिए टाइम होगा, होगा व्यर्थ के लिए टाइम। लोग हमें कहते हैं जब से व्हाट्सएप चला है ना, पुरुषार्थ कम हो गया है, उसी को कितना टाइम निकल जाता है, कितने घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता है, इतनी अंदर में बातें आती है, अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन वो पढ़ने में भी कितना टाइम निकल जाता है। तो आप सोचो, उसमें इतना टाइम दे रहे हो, अगर प्रैक्टिकल जीवन के अंदर एप्लीकेशन के पीछे इतना टाइम दो तो जीवन क्या होगा? लिफ्ट में ऊपर नहीं चला जाएगा, लिफ्ट में ऊपर चला जाएगा। और सारा दिन हल्केपन की स्थिति में रहेंगे और महसूस होगा कि वाह बाबा, कितना सुंदर तूने हमने ये ब्राह्मण जीवन दिया है। तो ज्ञान की एक एक पॉइंट्स के एप्लीकेशन से अनुभवी मूरत बनेंगे। जो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अनुभवी मूरत कभी कोई भी परीक्षा में फेल नहीं होता है, ये बाबा का वरदान है। अनुभवी मूरत बनने के लिए तो प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जितना उसका प्रयोग करो अनुभव मिलेगा। अनुभव से क्या होगा? परिपक्वता, मैच्योरिटी अंदर में डेवलप होंगी। और वो मैच्योरिटी जब चेहरे पर आती है, परिपक्वता जब चेहरे पर आती है, तो वो कोई भी बात से विचलित नहीं हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता है, टेंशन में नहीं आ सकता है। एकदम अपने जो सीट है उससे नीचे नहीं आ सकता है। इतनी सुंदर वो अनुभूति है परिपक्वता। हर बात के अनुभवी और अनुभवी होकर के जब परिपक्वता आ गई अपनी स्थिति के अंदर, तो उसको कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है और वो धोखा खा भी नहीं सकता है। मनुष्य तो क्या, माया भी उसको धोखा नहीं दे सकती है। माया भी हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे कि भाई इसको हराने की अभी बस मेरे बस की बात नहीं है, इतना परिपक्व हो गया है ये, इसको कोई बात के टेंशन में लाना मेरे बस की बात नहीं है, इसको मैं विचलित करूं मेरे बस की बात नहीं है। तो माया क्या करेगी? दूसरा ग्राहक ढूंढने जाएंगी? वो समझ जाती है कि अभी ये तो मेरी चाल में फंसने वाला नहीं है, परिपक्व जो हो गया। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी परिपक्वता को डेवलप करता है जो उस व्यक्ति को, उस आत्मा को कभी कहीं से भी धोखा देने वाला खुद धोखा खा जाएगा, उसको धोखा नहीं दे सकेगा। ये परिपक्वता ज्ञान की बातों से, ज्ञान की पॉइंट से है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा। तो तीसरा है ज्ञान की शक्ति से परिपक्वता को ले आना। फिर आगे किससे सजाएंगे? अंतर्मुखता से सजाया, पवित्रता से सजाया, फिर ज्ञान से सजाया, फिर चौथा नंबर वही गुण। तो बहुत बड़ा हो गया ना, है ना, चेहरे पर वो गुण कौन से आने चाहिए? तो चौथा नंबर है योग की शक्ति। योग की शक्ति से स्वयं को सशक्त बनाना है, पावरफुल करना है। इसीलिए बाबा की कल की अव्यक्त मुरली मुझे याद आती है। बाबा ने खास अमृत वेले कैसे सशक्त हम अपने आप को कर सकते हैं, वो सारी बातें कितना क्लियर रीति से बताई कि अमृत वेले तुम बाबा को जिस तरह से भी मनाना चाहो, रिझाना चाहो, जो चाहो कर सकते हो। ओपन ऑफर, भगवान ने ऑफर दे दिया हम लोगों को, है ना, तो फिर लाभ तो लेना चाहिए। उससे हम अपनी तकदीर की लकीरें बदल सकते हैं। कितनी बड़ी ऑफर है ये। तो योग की शक्ति से स्वयं को सशक्त कर लो, पावरफुल बना दो अंदर से। जितना अंदर से हम पावरफुल होंगे तो कभी भी कोई भी परिस्थिति में हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। या कभी भी कोई कमजोरी हमारे पर वार नहीं कर सकती है। सारे कर्मेंद्रियों को भी जैसे योग की शक्ति से सशक्त बना दे, तो वो कर्मेंद्रियां भी हमें धोखा देने के लिए हिम्मत नहीं करेगी, इतने पावरफुल है। तो इसीलिए योग की शक्ति से स्वयं को सशक्त करना, ज्ञान से तो सजा लिया, फिर योग से उसको सजाना, फिर आगे आगे किससे सजाएंगे। अब लास्ट में एक अब कौन सा होगा फिर जब योग से अपने आप को सशक्त करेंगे, फिर संतुष्टता, चेहरे पर कौन सा भाव, आत्म संतुष्टि का भाव। और आत्म संतुष्टि का भाव तभी आएंगे जब प्राप्तियों से संपन्न, जितना हमने अपने आप को बाबा से अनेक प्राप्तियों से संपन्न किया हुआ है, समृद्ध किया है। जैसे दुनिया के अंदर भी रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं, भरपूरता अंदर होने कारण वो चीज उनके चेहरे और चलन में दिखाई देती है। तो इसी तरह संतुष्टता माना सर्व प्राप्ति संपन्न। जब सर्व प्राप्ति संपन्न है तो चेहरे पर भाव कौन सा होगा, संतुष्टि के साथ प्रसन्नता, प्रसन्नता समाई होगी। जैसे कुछ मिल गया है, हमारे हाथ भरपूर है, हम एकदम जैसे कि माला माल है, हमारे पास जैसे कोई कमी नहीं, हमारे खजाने में सभी खजानों से हम भरपूर है, तो जैसे एक समृद्धि की निशानी, भरपूरता की निशानी, ये चेहरे पर भाव है, भरपूर है हम, है ना। तो जैसे वो नहीं कि खाली है, व्यर्थ चल रहा है, और फिर किसी से आशा रखते हैं, ये थोड़ा कुछ दे दे, वो दे दे, वो हमें पूछ ले, वो देख देख ले हमारे तरफ, नहीं। जो भरपूर है अंदर से, उसको कोई आशा अपेक्षा है ही नहीं। और इसीलिए भरपूरता, अंदर की समृद्धि, वो रॉयल्टी उनके चेहरे पर आने लगती है, समृद्ध है। जैसे पाना था सो पा लिया, भी कुछ नहीं बाकी रहा, इतना जैसे प्राप्ति संपन्न है, कभी कुछ भी बाकी नहीं है, हर रीति से हम भरपूर है। तो वो प्रसन्नता हमारे चेहरे के ऊपर आ जाती है, और वो प्रसन्नता जब आती है, वो मुस्कुराहट जो आ जाती है चेहरे पर, अपने आप प्रसन्नता वाली, वो नेचुरल है, दिखावटी हमें लानी नहीं पड़ती है, वो नेचुरल है, जिससे कि सब कुछ मिल गया, कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, सब कुछ भरपूर, तो खुशी झलकने लगती है, अपने आप वो खुशी चेहरे से बाहर निकलने लगती है। और खुशी माना वो दुनिया वाली हंसी नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते दुनिया वाली हंसी में बदबू आती है, बू आती है, लेकिन जो प्राप्ति वाली, खुशी वाली हंसी है, वो दिव्य है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि वो मुस्कुराहट श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के चेहरे पर दिखाई देती है, वो जोर से हंसते नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न होने कारण वो खुशी उनके चेहरे पर ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, वो भरपूरता वाली खुशी। जैसे कि मेरे जैसा खुश किस्मत, खुश नसीब और कोई नहीं है, वो खुशी अंदर से। तो ये कदम याद रहेंगे अपने आप को सजाने के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है हमारी। तो रूहानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बातें जरूरी है, ये कदम जरूरी है। और जब इन कदमों के आधार पर अंतर्मुक्ता से आरंभ करो, अंतर्मुक्ता, पवित्रता, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, हाँ, संतुष्टता की शक्ति अंदर में भरपूर करो अपने आप को, और तब वो खुशकिस्मती झलकने लगे, खुशकिस्मती वो चेहरे से प्रत्यक्ष होने लगे, तब तो लोग पूछेगा कि आपको ऐसा क्या मिला है, ऐसा क्या मिला है आपको खजाना जो आपके चेहरे पर, वो रूहानियत, वो खुशकिस्मती, वही दिव्यता वो झलक रही है, क्या मिला है आपको, वही बाप को प्रत्यक्ष करने का आधार है। ये पात्रता है जो हमें अपने अंदर विकसित करनी है, और इस पात्रता को जिसने विकसित किया और दुनिया के सामने वो बच्चे ने बाप का शो कर दिया, तो भगवान भी उसके ऊपर वारी जाएगा कि नहीं जाएगा, उस बच्चे के ऊपर, कि ये मेरा पात्र बच्चा है, और पात्र बच्चे के ऊपर भगवान भी क्या करेगा, दुआएं बरसाएगा, अपनी दुआओं से उनको भरेगा, है ना। जो बाबा ने बड़ी दादी जी के लिए कहा था, क्या भरी सभा के अंदर, कि दादी जी 95% संपन्न है ना, ये भगवान ने अनाउंस कर दिया 95%। और इसीलिए हमारे अंदर भी, हमारे लिए भी भगवान जैसे दुनिया के सामने अनाउंस कर दे, वो भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा चेहरा और चलन वो बोले कि दुनिया के हर आत्मा के मुख से निकलने लगे, पता नहीं इसको क्या मिल गया है, लगता है जैसे उसको साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई है, उसको भगवान मिल गया। हमें कहने की जरूरत न पड़े कि भगवान आ गया है, हम ढिंढोरा न पीते, लेकिन क्योंकि नहीं तो लोग हंसी करेंगे, भगवान आ गया, और इसका जीवन तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इसकी चलन तो देखो, है ना। लेकिन वो कहे कि जैसे उसको भगवान मिल गया है, ये उसके चेहरे से और चलन से दिखाई दे रहा, वो कहे, दुनिया कहे, हमारे आसपास वाले कहे, हमारे परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं है वो कहे, हमारे जीवन को देख करके कि सचमुच लगता है उसको भगवान मिल गया है, ये अल्लाह लोग है, यही अल्लाह लोग है, यही है, यही है, यही है, वो कहे। हमको कहने की जरूरत नहीं, अभी तक हम कह रहे यही है, यही है, यही हम कहने का प्रयत्न, और लेकिन उनके दिमाग में घुसता नहीं, लेकिन हमारे चेहरे और चलन को देख करके वो कहेंगे यही है, यही है, यही है, है ना। उसके जैसा सुंदर जीवन, और उस समय आप सोचो जब कोई आपको देख करके ये कहे यही है, यही है, इसको भगवान मिल गया है, हमें दो, उस समय कैसी फीलिंग आएंगी, कैसी फीलिंग आएंगी, ऐसा नहीं महसूस होगा धन्य भाग्य मेरा कि बाबा का बनकर कम से कम मैं इतना प्रत्यक्ष तो कर सका भगवान को, है ना, भगवान को इतना प्रत्यक्ष कर सका, ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी खुशनसीबी है कि बाबा को मैंने भले थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष किया, तो वो जो एक फीलिंग आएंगी, हाँ, कैसी होगी वो फीलिंग कैसी होगी, उसको इमेजिन कर सकते हैं कैसी फीलिंग होगी वो। तो इसीलिए चेहरा और चलन, है ना, कितना सुंदर उसका जीवन यहाँ हो जाएगा, और दुनिया की आत्माएं भी उनको देखते हुए जैसे मन करेगा उनको कि ये दिव्य मूरत को मैं देखता रहूं, देखता रहूं। है ना। अभी तक जैसे दुनिया में लोगों ने गीत बनाए कि माँ के अंदर उनको भगवान का रूप दिखाई देता है, कहते हैं ना भगवान से अगर नेक्स्ट अगर है तो माँ तेरी मूरत में भगवान की सूरत, ऐसे गीत बने हैं ना, लाइनें बनी हुई है कि हे माँ तेरी मूरत में भगवान की सूरत है। उस दिन आएगा कि जब लोग कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे में भगवान की सूरत हमें दिखाई देती है, तो कितना गर्व होगा उस समय खुद को कि चलो बाबा के कार्य में बाबा की जो पालना ली इतना रिटर्न तो हम कर सके, है ना। बाबा इतना ही चाहता है कि बच्चे आपका जीवन ऐसा बने जो लोग आपकी सूरत में भगवान की मूरत को देखे, है ना, उसके लिए चेहरा और चलन ऐसा बनाना है, ठीक है ना। तो मधुबन से क्या लेके जाएंगे, हाँ मधुबन की ये बट्टी ऐसी यादगार हो और ऐसी यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए कि जिससे अभी जो लोग पूछते हैं ना क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें, अभी क्या पुरुषार्थ करेंगे, हाँ मेकअप सेट मिल गया ना, मेकअप सेट मिल गया, रोज सुबह सुबह अपने आप को ये मेकअप डाल करके सजाओ और फिर कार्य क्षेत्र पर जाओ, दुनिया में जाओ, कहीं भी जाओ, ना कभी कोई परिस्थिति आपको परेशान करेगी, ना कोई समस्या आपको परेशान करेगी, ना टेंशन में लाएंगी, ना व्यर्थ संकल्प को चलाने के लिए निमित्त बनेंगी, लेकिन हर प्रकार की परिस्थिति में भी वो चेहरे को देखकर लोगों को भी आथत मिलेगी, आथत मिले कि भाई इसके पास जाकर हम बैठते हमको सुकून मिलता है, है ना। तो ऐसा अति इंद्रिय सुख की फीलिंग हमारे नजदीक आने से उनको मिले, जैसे कहा दुनिया के लोगों के पास में लोग बैठते हैं तो कहते बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, भय लगता है, उसके बाजू में बैठने का भी भय लगे, लेकिन हमारे बाजू में बैठना लोग चाहे और कहे कि हमें अति इंद्रिय सुख की फीलिंग आती है, वो वाइब्रेशन आते हैं, जैसे प्राप्तियों की फीलिंग आती है, परमात्मा प्यार की फीलिंग आती है, है ना, ये फीलिंग हमारे द्वारा जब उनको आए तो कहेंगे हाँ चेहरा और चलन पर मेकअप हमारा बढ़िया बढ़िया हो गया है ना, ये कहे दुनिया, ठीक है। हाँ तो मधुबन की बट्टी से यही अपने अंदर बात को भर करके जाओ और रोज अपना मेकअप जरूर करो, ठीक है। ओम शांति। कौन है? अच्छा, कितने भाग्यशाली हो देखो, हाँ दादी जानकी जी आपसे मिलेंगे।
ओम शांति। आपको पता मैं तीन बारी बोलती हूँ, ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। वंडरफुल आप हो, वंडरफुल पांडवों में मित्र सनाव में बैठे हो। अब मैं हमारी रिक्षा बहन तो बहुत अच्छा बताया, चेहरे और चलन से सेवा करनी है। अभी चेहरे और चलन, चलन ऐसी हो जो चेहरा चमकता रहे, युग युक्त राज युक्त ज्ञान युक्त, पहले पहले ज्ञान युक्त, युग युक्त राज युक्त युक्ति युक्त, ठीक है बहन है
जी,
बहन भाई भाई भी होंगे। अच्छा मेरे को बड़ी खुशी हुई, अभी प्रवीण ने कहा तो बहन दादी अभी तो वहाँ पांडवन में अपनी दिल की भावना सुना लो। तो मेरी दिल की भावना ये है, अभी तनमंदन से तो सब समर्पण है, तो मनवानी कर्म से सेवा करने का भाग्य मिला हुआ है। एक तरफ है भगवान, दूसरे भाग्य, तो मनवानी कर्म ऐसा हो जो वंडरफुल। कईयों को मेरे को कहा तुम केयर करती है, शेयर करती है, इंस्पायर करती है, समझा मेरी बहन ने भाई?
शेयर इंस्पायर,
केयर करना माना किसी हालत में भी केयरलेस नहीं रहना है। हरेक बाबा के बच्चा आत्मानी से बहुत अच्छे बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं एक दो के। मैं कहती हूँ अपना मित्र आप बाबा को अपना मित्र बनाना, सभी मेरे मित्र हैं, जो भी बहन भाई है मित्रता भाव में बहुत सम्मान में रहना, सम्मान देना, कैसे ठीक है ना, सम्मान में रह के एक दो को सम्मान देना, ये एक बड़ा अच्छा क्लियर रास्ता है। कभी भी आपस में एक दो के प्रति न टक्कर न टक्कर, समझा, कई प्रकार का भी किसी के चक्कर में भी नहीं आना है। और भूल से कभी भी चक्कर में नहीं आना, ये शुभता नहीं है। सदाए एक दो के साथ बड़ा रिजार्व से रहना, तो रिजार्व देने का रिकार्ड रखना है, रिकार्ड अच्छा हो, जो बात करे चेहरा मुस्कुराता रहे। मेरे को ये गीत बहुत अच्छा लगता है, जब ब्रज कोठी में हम थे तो बाबा ने, प्यारे बाबा ने मेरे बैठे जा रही थी बुलाया अपने कमरे में, कहा जनक ये गीत अच्छा लगता है ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ठीक है ना, आपको भी अच्छा लगता है ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा। जो मुस्कुराते हैं कोई बात उसके आगे मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है कुछ भी नहीं है, बड़ा प्यार से एक है प्रेम, एक है प्यार, दूसरा है प्रेम, तीसरा है रूहानी स्नेह। अभी हमको रूहानी स्नेह में संपन्न बनना है, समझा मेरे बहन भाई। अच्छा अभी यहाँ साढ़े छह बज गया, 10 मिनट आप लोगों से रो रहे हैं कि और कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अभी राजू भाई मेरे पास आया है, आ रहा है। अच्छा राजू भाई देखा ना मूली कैसे अच्छी, हमको रोज मूली मिलती है, ये वरदान। और जब स्लोगन कमीशन नया अच्छा मिलता, मैं 2-3 बार ही बैठती हूँ, वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल बाबा के बच्चे हैं, और अच्छा सभी पांडवन में कितना अच्छा, बाबा के रूम में भी बैठे होंगे, चारों धाम के लगाए थे, तो भक्ति मार्ग में तो यात्रा करते हैं चारों धाम के, और हम ज्ञान मार्ग में बाबा के पांडवों में चारों धाम की यात्रा कौन सी है, बताओ। बाबा की रूम है, शांति सितम्बर, हिस्ट्री हॉल है और झूपड़ी है, एम एस चारों गांव क्या यात्रा, ये फायदा पांडवों का मैं कल मेरे संतरम था ऊपर आ जाऊं, लेकिन शरीर थोड़ा खिटपिट किया और शांति से यहाँ रह गई, कभी देखेंगे चांस ले मिलेगा ऊपर आ जाएगी। अभी तो दिल्ली में 21 जून के लिए बजमोहन भाई ने प्रोग्राम रखा है, वहाँ जब मैं अमेरिका और लंदन में थी वहाँ भी लिखा था, तो 21 जून को कहीं का प्रोग्राम और कहीं का प्रोग्राम नहीं बनाना, दिल्ली में आना ही है, तो दिल्ली में लाल किले में भी प्रोग्राम है और श्री फोर्ट शाहजो हॉल है वहाँ 21 जून को है वो 20 जून है, मतलब जो बाबा कराता है करावनार वो है करने के निमित्त हम बच्चे हैं, बस हम ये नहीं कि मुझे करना है मैं करूंगी, नहीं मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा सर्वशक्तिवान है। आज बाबा ने मूली में कहा सहनशीलता चाहिए, समझा, सहनशीलता का गुण बड़ा अच्छा है, आप समझ गए ना मेरी बात को, बच्ची की कर रहे हो ना अच्छा है, बच्ची का न माना एकांत में आपस में मिलकर बल मिलते हैं, परंतु पांडवों में एकांत का फायदा भी अच्छा मिल जाता है, एकांत में रहना अंतर्मुखी बन करके क्या करने का एक रस स्थिति अच्छी बनानी है। थैंक यू, ओम शांति। राजू वालों करेगा क्या तो हदी सुख सेवा भी हदियों से करनी है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, वरदान तो ये है याद है और सेवा, याद ऐसी हो जो बस और कोई याद आता ही नहीं, न पराई बात न पुरानी बात, कुछ याद है वरदान ये मिला हुआ है, आप वरदाता के बच्चे हो, बाबा वरदाता है ना। थैंक यू, ओके, ओम शांति।
थैंक यू बाबा, थैंक यू दादी, थैंक यू ड्रामा, है ना?
ओम शांति। देखो सब कुछ, आप सबको लॉटरी खूब मिलती जा रही है, अच्छा देख लो, तो सभी परम सौभाग्यशाली आत्माएं बैठी हैं, हैं? आप लोग का बात चली थी ना कि इतना पावरफुल योग लगाओ जो दादियों को आपका आकर्षण हो चले आए, तो जानकी दादी जी भी पहुंच गए और बताया रतनमयी दादी भी आ रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपका योग का कमाल है, ये आप अच्छी बठी कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाकी तो जैसे बरसात भी दिख गई है, मौसम भी अभी
नहीं, बरसात आया ना पूरा रास्ते ऊपर से आ रही थी तो पूरा बारिश थी, बहुत बारिश थी आज,
तो अभी आप सबको अपना श्रृंगार की किट मिल गई है, इसलिए मेकअप किट को संभाल के भी रखेंगे, उसको यूज करें, संभाल के रखना नहीं है लेकिन उसको यूज करना है, किस लिए यूज करना है, प्यारे बाबा का नाम हमने अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करना है, हमारा चेहरा ही सब कुछ करेगा, चलन ही सब कुछ करेगी, तो आदरणीय उषा दीदी ने हम सबको कितनी अच्छी टेक्निक दे दी, बस ये किट यूज शुरू करो, मेकअप रोज सुबह सुबह शुरू कर दो, फिर अपने कार्यक्षेत्र में हम चल, ये गिफ्ट आपको आज बठ्ठी का लास्ट डे है ना, तो आपको ये मेकअप की गिफ्ट ये भी किट भी मिल गई है और स्मार्टफोन भी मिल गया है, सिर्फ एप्लीकेशन को आपको यूज करना है, तो सारा कुछ आज के दिन आपको सौगात के रूप से मिल गई। स्थूल सौगात भी बाबा की याद दिलाती है, लेकिन ये सौगात जो सदा ही आपके साथ रहेगी, सदा ही आपको काम आएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी का। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, अभी उषा दीदी हमको योग भी कराएंगे, अनुभव कराएंगे कमेंट्री से, जैसे भी आप समझेंगे उषा दीदी अभी कराएंगे।
ओम शांति। मेरा लक ये था कि कल मुझे किसी कारण से ज्ञानसरोवर जाना पड़ा आर्ट गैलरी के लिए, तो ज्ञानसरोवर में ही खाने के लिए हम लोग गए लंच, तो वहां पे हमको दीदी से मिलना हुआ। तो मैंने कहा भाई आप बहुत साल पहले हैदराबाद में थे, तो हम उस राजधानी के तो हैं, सेम राजधानी के, तो एक बार आप जरूर सिकंदराबाद में भट्टी के लिए आना ही है। तो वो सिर्फ मैंने अकेले नहीं दिया, आप सबके संकल्प से दिया, फिर भी सबके सामने आप सभी दीदी को, मैंने कहा दीदी को डेफिनेटली शेड्यूल बहुत टाइट है और वन ईयर तक फिक्स है। मैंने कहा दीदी बीच में दो दिन होता है ना रूंग, लेकिन इसी साल में दो दिन कोई भी दिन हो वो रूंग देके जरूर आएंगे। तो मैं फिर भी नीचे मिलूंगी दीदी से, उनका शेड्यूल में लिखवा के आऊंगी इस बार। थैंक यू वेरी मच ओम शांति।